पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही और दिशा ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ी गईं। इस अध्याय में रुद्र ने उन बॉडीगार्ड्स को डांटा जिन्होंने रूही को नहीं ढूंढा। अमन ने बताया कि रूही भागने की कोशिश कर रही है तो रुद्र ने स्टेशन के सभी रास्तों को बंद करने का आदेश दिया। दिशा और रूही पकड़ी गईं। रूही को रुद्र के पास ले जाया गया और दिशा को अनाथाश्रम भेज दिया गया। रूही डर गई। रुद्र ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे कार में धक्का दे दिया। फिर उसने रूही को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे सिंघानिया विला ले गया। चैप्टर 71। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ कार में रूही जैसे ही रुद्र से बोलती है कि उसे छोड़ दें, उसे दर्द हो रहा है। इस बात को सुनकर रुद्र की पकड़ रूही पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और वे झुककर रूही के गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिसके रूही की हल्की चीख निकल जाती है और वे अपनी गले पर हाथ रख अपनी आंसू भरी आंखों से रुद्र को देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, वैसे ही रुद्र उसके होठों पर उंगली रख अपनी ठंडी मगर कड़क आवाज में बोला, रू, अभी तुम्हारे बोलने का टाइम नहीं हुआ है। अब सिर्फ तुम उतना ही बोलोगी जितना मैं तुम्हें बोलने को बोलूंगा। उसके अलावा अगर तुम्हारे मुंह से कोई भी वर्ड निकला तो तुम्हें इसी तरह पनिशमेंट्स मिलेगी। अब चुपचाप बिल्कुल इसी तरह मेरी गोद में बैठी रहो, क्योंकि आज जो तुमने गलती की है उसकी पनिशमेंट्स भी तुम्हें बड़ी मिलने वाली है। इसलिए अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गुस्सा मेरा घर पर निकलने वाला है वे अभी तुम्हारे ऊपर निकल जाए। रुद्र की बात सुनकर रूही काफी ज्यादा डर जाती है, मगर कुछ बोलती नहीं, क्योंकि रुद्र जिस अंदाज में अपनी बात बोल रहा था वे रूही क्या, अगर रूही की जगह कोई और भी होता तो उसका भी यही हाल होता। वहीं रुद्र अपनी बात बोलने के बाद रूही की गर्दन को देखता है जहां पर उसके काटने से निशान बन गए थे, जिसे देख रुद्र दोबारा उसी जगह पर अपने होंठ रख रूही को चूमने लगता है, जिसे महसूस कर रूही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रुद्र के ऐसा करने पर उसे आराम तो मिल रहा था, पर रुद्र जिस गहराई से उसे चूम रहा था वे चीज रूही के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। वहीं रुद्र रूही को चूमते चूमते उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाल उसकी कमर को सहलाने लगता है और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर की तरफ ले जाने लगता है, जिसे महसूस कर रूही अपनी आंखें एक झटके में खोल लेती है और रुद्र के हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, छोड़ो मुझे। रुद्र जो कि रूही को चूमते चूमते उसमें खोसा गया था, रूही के यूं अपनी कमर से हाथ हटाने की वजह से और बार बार छोड़ने के लिए कहने से वे तुरंत होश में आता है और रूही को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है, जिसे देख रूही सहम सी जाती है और उसके गोद से उतरने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख रुद्र रूही की गर्दन पकड़ उसके चेहरे को ऊपर कर अपने चेहरे के करीब ला अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, रू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ अपनी कमर से हटाने की। रू, एक बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम मेरी हो और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए तुम मेरा हक लेने से रोक नहीं सकती। इतना बोल वे झुक कर उसके लिप पर बाइट कर लेता है, जिसके रूही की फिर से चीख निकल जाती है। इसी के साथ कार सिंघानिया विला में ठकर रुकती है, जिसे देख रुद्र रूही को छोड़ देता है, जिसे देख रूही भी अपने दुपट्टे से अपने होठों को साफ कर जल्दी से कार का दरवाजा खोलती है और बाहर निकल जाती है। जब वे बाहर निकलती है तो देखती है कि रुद्र कार से निकल उसी की तरफ आ रहा था, जिसे देख रूही को काफी डर लग रहा था। वहीं रुद्र अपनी नीली आंखों से रूही को देखते हुए जैसे ही उसके करीब आ उसका हाथ पकड़ने वाला था, रूही जल्दी से रुद्र का हाथ झटक दौड़ते हुए विला के अंदर भाग जाती है। वहीं रुद्र जैसे ही रूही को अपना हाथ झटकते हुए और उसे खुद से यूं दूर भागते हुए देखता है तो गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, रूह, माई इनोसेंट रूह, तुम्हारे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलने लगे हैं, शायद मैंने ही तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे उड़ते हुए पंख काटकर तुम्हें अपने काबू में करूं, वरना अगर इसी तरह मैंने तुम्हें छूट दे दी तो वे वक्त दूर नहीं जब तुम मुझसे दूर चली जाओ। तुम्हें अपने पास रखने के लिए तुम्हारे मन में मेरा डर होना बहुत जरूरी है, रूह। इतना बोल वे भी विला के अंदर चला जाता है। रुद्र जब विला के अंदर पहुंचता है तो अंदर का नजारा देख वे और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वे देखता है कि रूही सुमन जी के गले लग रो रही है, जिसे देख रुद्र गुस्से में रूही के पास जाता है और उसे सुमन जी से अलग करते हुए अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है, रूह, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिसेस सिंघानिया के गले लगने की। मैंने तुम्हें मिसेस सिंघानिया से बात करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर उनसे गले लग जाओगी। रूह, आज के बाद मैंने तुम्हें कभी भी इनके इतने करीब देखा तो अच्छा नहीं होगा। फिर सुमन जी की तरफ देख बोला, और आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बीवी से दूर रहिएगा, क्योंकि आप भले से इस घर की बहू हैं और डैड की वाइफ, पर आप कभी भी मेरी माँ नहीं बन सकती हैं, तो मुझसे और मेरी रूह से दूर रहिएगा। रुद्र की बात सुनकर सुमन जी की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वे कुछ कहती नहीं, क्योंकि उन्हें शुरू से रुद्र के ऐसे बिहेवियर की आदत थी। वहीं रूही रुद्र को अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए देख हैरान थी, मगर वे कुछ नहीं कहती,
क्योंकि रुद्र वैसे ही काफी गुस्से में था। अगर वे कुछ बोलती तो रुद्र अपना सारा गुस्सा उस पर ही उतारता। अब तक सारे घर वाले भी आ गए थे, सिवाय घर के मर्दों के सिवा, क्योंकि वे सब ऑफिस गए हुए थे। रुद्र को इतने गुस्से में देख कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उन सभी को अपनी जान प्यारी थी। वहीं रुद्र सुमन जी को सुनाने के बाद रूही की तरफ देख अपनी सर्द आवाज में बोला, रूह, शादी के दूसरे ही दिन तुम किसके पूछकर घर के बाहर गई? रूही की इस बात को सुनकर रूही अपनी हल्की सी नजर उठा सुमन जी को देखती है, फिर रुद्र की तरफ बिना देखे अपना सर जमीन की तरफ करते हुए अपनी हकलाती आवाज में बोली,
रुद्र की बात सुनकर रूही अपने कपड़ों को मुट्ठियों में भर लेती है, मगर कुछ बोलती नहीं। वहीं रूही को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर सुमन जी समझ जाती हैं कि रूही उन्हें बचाने के लिए रुद्र से झूठ बोल रही है। इसीलिए वे खुद रुद्र को कुछ ऐसा बोलती हैं कि रुद्र अपनी जलती हुई निगाहों से उन्हें ही देखने लगता है।